श्रीमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुज राधा मदन मोहन दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविंददेवो प्रश्वालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः श्रीचैतन्यं वन्दे बालोपियदनुग्रहात् तारेर्नानमतग्राहाव्याप्तं सिद्धान्तसागरं वैष्णवकीर्तनगाननर्तन पातोञ्जनीव्राजिता सद्भक्तावलिहंसचक्रमधुका श्रेणीविहारास्पदं कर्णानन्दिगळाध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुत्प्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वर्धुनि आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकर्त्राय ते नमः वन्दे गुरुमीशभक्तान् ईशं मीशावतारकान् तत्प्रकाशान् तच्चक्ति कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तो चित्रौ सन्धौ तमोनुदौ यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदै तदप्यस्य तनुभा यान्तर्यामि पुरुषः इति स्वस्यांश वैभवः षडैश्वर्यपूर्णो यह्य भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परं विहाम् अनर्पितचरिं चिरात् कारुण्यावतीर्णकलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरदसुन्दरज्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्पृहतु वसचिनन्दन राधाकृष्णप्रणया विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनो विपुरदेहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रगढमधूनदद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावज्युतिस्वलितं नो मे कृष्णस्वरूपम् श्रीराधाया प्राणिमाकीदृशो वा नैव दृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुबतः कीदृशं वेत्ति लोभा तद्भावाढ्यसमाजनि शचिगर्भसिन्धुहरिन्दु वैराग्यविद्या निजभक्तियोगा शिक्षार्थमेका पुरुषा पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रवद्ये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरद्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् दशा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञे सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधश जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीमद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल रूप शिक्षा में हम बहुत सारे बातों में चर्चा किए, चर्चा करते हुए खास करके भक्ति लता बीज के बारे में चर्चा किए कि किस प्रकार साधु और भगवान की कृपा की वजह से गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। तो इस भक्ति लता का बीज एक बार हमारे हृदय नामक एक जमीन में या खेती में जब बोया जाता है तो उसको सींचना पड़ता है, उसको रोज पानी डालना पड़ता है। वो कौन सा है, पानी क्या है जिसके द्वारा ये भक्ति लता बीज अंकुरित होते हुए धीरे धीरे से वो लता बढ़कर बढ़ते हुए ब्रह्मांड को भी छेद करते हुए विरजा नदी को पार करते हुए ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए वैकुंठ के लोगों को पार करते हुए वो कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचता है, उधर कृष्ण प्रेम का फल को प्रदान करता है। तो इसको सींचने का तरीका क्या है, श्रवण कीर्तन। तो ये श्रवण कीर्तन रोज नियमित रूप से करना चाहिए जिसके द्वारा हमारा भक्ति लता भी उगना शुरू होता है। लेकिन ये जो भक्ति का जो सुंदर बगीचा जो हमारे हृदय में बनाए हैं उस बगीचे को संरक्षण करना होता है। वो संरक्षण कैसे करेंगे, वैष्णव अपराध से बचाने के वैष्णव अपराध से संरक्षण करना होता है। तो संरक्षण हम एक फेंसिंग डालते हैं, फेंसिंग मतलब उनको एक बांध काम करके रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं कि ताकि बाहर का कोई मदमत हाथी खास करके वैष्णव अपराध आके उसको नुकसान ना करे, उसको बर्बाद ना करे। तो ये फेंसिंग क्या है, वो बांध काम क्या है, वो है वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार। अगर भले ही अंदर वैष्णव अपराध की प्रवृत्ति भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति सदाचार के नियमों को पालन करता है, एटिकेट्स को पालन करता है, किस प्रकार उठना, किस प्रकार बैठना, किस प्रकार पहनना, किस प्रकार बोलना, ये सब आचरण जब व्यक्ति सीखता है तब उसका जो संरक्षण होता है, भक्ति को संरक्षित करके रख सकता है। ही कैन प्रोटेक्ट द डिवोशन फ्रॉम मदमत हाथी। उसके अलावा बहुत सारे घास फूस उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा सारा जो श्रवण कीर्तन यानी जो पानी है वो घास फूस ले लेता है और वो बढ़ना शुरू होता है। वीड्स, अनवांटेड वीड्स शुड बी प्लग्ड आउट। हमने छह प्रकार के जो अनर्थ है उसके बारे में भी चर्चा किया। वो है सबसे पहला निषिद्धाचार, कूटनादि, जीव हिंसा और पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो इन सब के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को वर्णन करते हैं। जब वर्णन करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को क्या करते हैं, वो जो वर्णन कर रहे हैं वो अस्तित्व में क्या वर्णन कर रहे हैं, वही बात को वर्णन कर रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से सुना था। तो रामानंद राय से जो बातें श्री चैतन्य महाप्रभु सुने हैं उन्हीं बातों को श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, रूप गोस्वामी को बता रहे हैं और साथ साथ में रूप गोस्वामी के हृदय में वो शक्ति को भी प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा उन बातों को समझ सके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदान किया प्रश्न पूछने का, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शक्ति प्रदान किया समझने का, और श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को शक्ति प्रदान किया कृष्ण तत्व का बारे में वर्णन करने का। तो ये शक्ति संचार के बिना ये श्रवण और कीर्तन या दूसरे शब्दों में कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में समझना, कृष्ण के बारे में प्रश्न या प्रसंग के बारे में प्रश्न पूछना ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो कृष्ण संचार ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तब इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी बात को वर्णन करते हैं। अभी तक तो मैं साधारण सा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए उसके वर्णन किया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है भक्ति के पीछे है। रूप गोस्वामी सुनो इन गहरा सिद्धांत को, असित में एक भक्ति नामक जो कार्य है ये सिद्धांत है बहुत गहरा है और एक बड़ा सागर के बराबर है। तो ये सागर के बराबर है पूरा तो चर्चा नहीं कर सकता हूं लेकिन उसका एक बिंदु मात्र मैं तुमको बता सकता हूं। तो उसके बारे में सुनो करके आगे बताते हैं। आगे बताते हुए कि फर्दर कंसिडरेशन, जो फिफ्थ पॉइंट भी लिखा है, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशन सर्विस, नो डिजायर शुड बी देयर फॉर अ डिवोटी एक्सेप्ट डिजायर टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। The devotee should minimize bodily demands and enough to simply keep his body and soul together. He should engage the senses in service of Krishna. In sabko ya saar roop mein karte hue Shri Chaitanya Mahaprabhu asthit mein Rupa Goswami Pad ko teen shlokon ko varnan karte hai, ya teen shlok jo aaj ke notes mein humne wo teen ya char shlok humko aapko diye hai, khulenge to open 14th page. खासियत में ये जो कुछ श्लोक है शुरुआत के तीन और चौथा भी, ये बक्तिरसामृत सिंधु के मुख्य श्लोक माना जाता है, क्योंकि बक्तिरसामृत सिंधु जो आपको स्टॉल में उपलब्ध प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो बक्तिरसामृत सिंधु का सार संकलन है, द नेक्टर ऑफ डिवोशन. नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ समरी स्टडी ऑफ बक्तिरसामृत सिंधु. Krishna book is a summary study of the 10th canto of Bhagavatam. Teachings of Lord Chaitanya is a summary study of Chaitanya Charitamrita. Summary study matlab kya hai? Sar sankalan. Ek hota hai vyakhya, ek hota hai anuvad. Vyakhya alag hota hai, anuvad alag hota hai, sar sankalan alag hota hai. To Shri Prabhupada ji ne ye 10th skand ka jo sar sankalan hai, Krishna book ke roop mein humko prastut kiya. टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो है वो चैतन्य चरितामृत का सार संकलन है, समरी स्टडी. समरी स्टडी मतलब उसके अंदर श्लोकों का विस्तृत कोटेशन नहीं रहता है, बल्कि वो श्लोकों का अनुवाद और एक के बीच में एक स्वाभाविक तरीके से अपने आप अच्छी तरीके से एक प्रोज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. तो इसलिए हम चैतन्य चरितामृत जहाँ जहाँ जरूरी है उधर के श्लोकों को आपको बता रहे, ताकि आप जब इन नोट्स को पढ़ेंगे या चैतन्य शिक्षामृत को पढ़ेंगे तो इन श्लोकों को साथ में रख सकते हैं. तो बक्तिरसामृत सिंधु को श्री रूप गोस्वामी पाद के रचित ग्रंथ है, और पूरा बक्तिरसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी का श्री चैतन्य महाप्रभु का इस संवाद के ऊपर आधारित होकर पूरा बक्तिरसामृत सिंधु को रचना करते हैं. तो उस बक्तिरसामृत सिंधु का जो परिभाषा सूत्र है, यानी मूलभूत श्लोक है जिसके ऊपर सारा बक्तिरसामृत सिंधु आधारित है, अगर सारा बक्तिरसामृत सिंधु इस श्लोक के ऊपर आधारित है तो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के बीच में जो चर्चा का पूरा सार के रूप में अगर बोला जाए, इस श्लोक को लिया जा सकता है. क्या है वो? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम. इधर उत्तम भक्ति का वर्णन किया गया है. इधर संक्षिप्त में बोला जाए तो उत्तम भक्ति के 5 लक्षण होते हैं. क्या है वो? अन्याभिलाषिता शून्यम एक लक्षण है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम दूसरा लक्षण है, तीसरा है अनुकूलेन, चौथा है कृष्णा, पांचवा है अनुशीलनम. ये 5 भक्ति के लक्षण होते हैं. ये 5 में से पहला जो 2 है, यानी अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये 2 बातें भक्ति के गौण लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण होते हैं. और अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, ये तीन जो है वो भक्ति के स्वरूप लक्षण होते हैं. तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भक्त को कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई उनके मन में विचार नहीं आना चाहिए. उनका पूरा जीवन केवल एकमात्र उद्देश्य भक्त किस प्रकार मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, कृष्ण को संतुष्ट करूं, केवल कृष्ण के अलावा और कोई मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है. तो ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा है. और रूप गोस्वामी पाद के संवाद या श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के संवाद का बहुत महत्वपूर्ण संवाद में महत्वपूर्ण श्लोकों में गिना जाता है. ठीक है, अगर वैसा है, ये तो भावना हो गया कि हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपने बोला कि भक्ति मतलब अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब कार्य, कार्य तो इंद्रियों के द्वारा होता है. तब भक्ति का और एक परिभाषा देते हैं, बोलते हैं कि सर्वोपाद विनिर्मुक्तम तत्वरत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषि का मतलब इंद्रियों, हमारी इंद्रियों को जो वास्तविक नियंता है, इंद्रियों की वास्तविक नियंता कौन है? कृष्ण है, यानी उनका, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश. कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है. क्यों? क्योंकि वो सारे इंद्रियों के नियंता है. तो हमारे इंद्रियों को जो सारे इंद्रियों के नियंता की सेवा में लगाना ही भक्ति है. तो इसको वर्णन करने के बाद श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि क्या हमको मुक्ति का इच्छा हो सकता है? नहीं, एक शुद्ध भक्त का मुक्ति का भी इच्छा नहीं है. तो तब रूप गोस्वामी पाद ये श्लोक कोट करते हैं, बक्तिरसामृत सिंधु है भागवतम का एक श्लोक, बताते हैं कि सालोक्य सारिष्ट सामिप्य सारूप एकत्वम अभियुता धीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना. धीयमानं न गृह्णन्ति, अगर भगवान भक्तों के पास आगे बोलते देखो ये मुक्ति ले लो, सारूप मुक्ति, सावज मुक्ति सब ले लो, अब मतलब बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। अगर इस मुक्ति में मत सेवना, अगर सेवा की भावना नहीं है तो ये मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। या ये भक्ति से उत्पन्न हुआ जो आनंद है, उस आनंद अगर सेवा में अगर रुकावट पहुंचाता है उसमें भी मुझे कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार ये श्लोक को रूप गोस्वामी पाद की चर्चा में ये श्लोक भी आता है। तो ये आखिरी वाला श्लोक है जिसमें बहुत एक सुंदर सा लीला भी युक्त है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा गतम विदयो भवेत। जब तक हमारे हृदय में ये भुक्ति यानी भौतिक इच्छा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का, और मुक्ति यानी इंद्रिय तृप्ति से एकदम एक प्रकार का इन सब चीजों से विरक्ति विरक्त होना, विरक्त मतलब एक प्रकार बोला जाए मुक्ति की कामना, ये जब तक ये दोनों पिशाची हृदय में बैठे हैं तब तक भक्ति का जो सुख है उनका आनंद है अनुभव नहीं किया जा सकता है। अधिकांश भक्त लोग बोलते हैं कि अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी ये दोनों कामनाएं पिशाची हृदय में बैठा है। तावत भक्ति सुखस्य यात्रा खत्म अभ्युदयो भवेत, वो कैसे उत्पन्न होगा जब तक ये दोनों प्रकार के पिशाची हृदय में बैठा है। तो एक बार ऐसा हुआ, जीव गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद बहुत सबसे छोटे गोस्वामी हैं और रूप गोस्वामी पाद का सेवा करते थे वृंदावन में, और रूप गोस्वामी पाद के सारे ग्रंथों को जीव गोस्वामी पाद एडिटिंग करते थे, उनका सब बराबर है कि नहीं, क्या सब सेटिंग करना, उस प्रकार सब संस्कृत के सब शब्दों का ग्रामर वगैरह चेक करना सब कुछ करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ तो रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए वल्लभाचार्य आए। वल्लभाचार्य आके रूप गोस्वामी पाद से मिले तो रूप गोस्वामी पाद ने उनको बहुत आदर सम्मान दिया, उनको प्रसाद वसाद सब प्रदान करके उनको आदर सत्कार करके उन्होंने बताया कि मैंने अभी एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, आप इस ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखिए यानी अपना कॉमेंट दीजिए। तो वल्लभाचार्य ने पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा, पढ़ के बोला साहब ठीक है लेकिन इसके अंदर एक श्लोक गड़बड़ है। तो इस श्लोक को बोले, बोले कि आपने लिखा इस श्लोक को भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा खत्म अभ्युदयो भवेत, उसके अंदर आपने भुक्ति को पिशाची बोला है। मैं मानता हूं भुक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति भावना को आपने पिशाची बोला है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने मुक्ति को भी पिशाची बोला है। लेकिन मुक्ति पिशाची कैसे हो सकता है, ये तो अच्छी बात है मुक्ति, मैं मानता हूं भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन मुक्ति को पिशाची जो है ये सख्य नहीं है, मान नहीं सकता हूं। तब रूप गोस्वामी पाद उनको स्वीकार किए, उस समय जीव गोस्वामी पाद ये सब सुन रहे थे, और रूप गोस्वामी पाद ने फिर वापस स्वीकार किया बहुत नम्रता से, उन्होंने ठीक है हम अभी उसको करेक्शन करेंगे करके उन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ समय के बाद जीव गोस्वामी पाद वल्लभाचार्य को या उनको छोड़ने के लिए गए यमुना के तट तक। जब रास्ते में रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद पूछते हैं वल्लभाचार्य से कि आपका इतना हिम्मत कि हमारे मेरे जो गुरु जीव को स्वरूप और स्वयं पाद के ग्रंथों में कुछ गलती निकालने का। तब उनके शास्त्रार्थ के द्वारा उन्होंने साबित किया जीव को स्वयं पाद ने कि ये मुक्ति का भी लालसा जो है वो भी एक पिशाची के बराबर है, शास्त्रों कोटेशन से लेके। तब वल्लभाचार्य जीव को स्वयं पाद के विद्वत्ता को देख के आश्चर्यचकित हो गए। तब बाद में रूप गोस्वामी पाद को मालूम पड़ा कि जीव गोस्वामी पाद ने जो है वल्लभाचार्य से इस प्रकार का डिबेट करके वाद विवाद करके उनको हरा दिया और स्थापना किया कि ये जो ग्रंथ सही है रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ सही है। जैसे रूप गोस्वामी पाद को मालूम पड़ा तुरंत जीव गोस्वामी पाद को बुलाए, आपको वृंदावन में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि अभी भी आपके अंदर तर्क करके दूसरों को हरा के कुछ मत को स्थापना करने की अभी भी भावना है, उस प्रकार की भावना है आपके अंदर, वो नम्रता नहीं है, तो आप वृंदावन में नहीं रह सकते, इधर से निकल जाओ। जीव गोस्वामी पाद बहुत दुखी हो गए और एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे और कुछ बिना खाए वो रूप गोस्वामी पाद के विरह में वो रो रहे थे। बहुत दिन हो गए, सारे गांव वाले परेशान हो गए कि इतना सुंदर सा साधु है, बहुत छोटा सा युवक नौजवान साधु है और वो कुछ खाते भी नहीं है, क्या हो गया करके वो बहुत दुखी थे सारे जितने भी गांव वाले थे। उधर उस दिन एक दिन सनातन गोस्वामी इस गांव में पहुंचे तो सारे गांव वाले जाके बताए कि उधर एक साधु है, एक युवक साधु है, ये हमेशा विरह में किसी की इसमें याद में रोते रहते हैं और वो कुछ खाते भी नहीं है। तब सनातन गोस्वामी पाद को सब लेके गए, सनातन गोस्वामी जाके पहचान गए तो रूप को जीव गोस्वामी पाद है। तो जीव गोस्वामी पाद से पूछे तो क्या हुआ, जीव गोस्वामी पूरा कहानी बताया। तब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के पास आके पूछते हैं कि वैष्णव का सर्वोच्च धर्म क्या है। आपने तो भक्ति रसामृत सिंधु और नाना प्रकार की का बातों को लिखा है, लेकिन ये बताइए वैष्णव का सर्वोच्च धर्म होता क्या है। तब रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद को बताते हैं कि वैष्णव का सर्वोच्च धर्म है जीवे दया। जीवे दया, जीव के प्रति दया दिखाना, ये वैष्णव का सर्वोच्च धर्म है। तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि रूप गोस्वामी पाद आप तो महान वैष्णव हो, आप सारे जीवों के ऊपर दया दिखा रहे हो, लेकिन आप एक जीव को भूल गए हो। तब रूप गोस्वामी पाद समझ जाते हैं, तो सनातन गोस्वामी के निवेदन के ऊपर तो जीव गोस्वामी पाद को फिर वापस स्वीकार करते हैं। तो ये है शुद्ध भक्ति का कुछ लक्षण इन श्लोकों के ऊपर। अगर कोई शुद्ध भक्ति का लक्षण आपको वर्णन करने के लिए बोलता है, इन कुछ श्लोकों को आप वर्णन कर सकते हो। तब एक कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू किया तो इस भक्ति में तीन स्तर होते हैं। एक है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। तो आप इसके अंदर थ्री स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस सेकेंड पेज में, कल वाला नोट सेकेंड पेज में देखा हुआ, थ्री स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। सबसे पहला है कि बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन यानी साधन भक्ति। साधन भक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये साधन भक्ति के नौ अंग है। ये सबसे पहला। तो ये साधना करते करते व्यक्ति क्या होगा, एक प्रकार भाव को प्राप्त करता है। सेकंड क्या है, रियलाइजेशन ऑफ सर्विस। एक तो सेवा चालू है, मैकेनिकली चालू है, लेकिन करते करते एक प्रकार का साक्षात्कार होता है, आनंद को अनुभूति होता है, भाव की प्राप्ति होता है, इसको बोलते हैं भाव भक्ति। तो भाव भक्ति धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है, प्रेम भक्ति के रूप में परिणित होता है, अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, ये है प्रेम भक्ति का। तो ये प्रेम भक्ति के अंतर्गत भी चार स्तर है। एक है राग अनुराग भाव और महाभाव। ये प्रेम भक्ति का ये जो चार स्तर है, ये सनातन रूप श्री चैतन्य और बताते हैं कि ये प्रेम भक्ति का ये चार स्तर का वर्ण तुलना किया जा सकता है कि जो शक्कर जो है, शक्कर बनाने की जो प्रतिक्रिया उसके बराबर। आप गन्ना का जो रस निकालेंगे, वो रस को वो बॉयल करते करते क्या होगा, अंत में वो शक्कर बनता है, वो धीरे धीरे से गाढ़ा बनता रहता है और अंत में आपको जो कड़ी शक्कर है प्राप्त होता है, शुगर कैंडी प्राप्त होता है। तो वैसे ही ये जो चार स्तर है, राग मतलब सबसे पहला अटैचमेंट प्रेम के अंतर्गत, और धीरे धीरे से अनुराग में बदली होता है, और भाव में, और महाभाव जो है वो सर्वोच्च स्तर है। ये महाभाव केवल कृष्ण और राधा रानी या श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों का मिलन स्वरूप, यही लोग अनुभव कर सकते हैं, और भी कुछ निकटतम संगी लोग मात्र ये महाभाव को अनुभव कर सकते हैं, कोई और अनुभव नहीं कर सकता है। ये सब बातें श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं, और इनके ऊपर आधारित होकर श्री रूप गोस्वामी पाद अपना भक्ति रसामृत सिंधु का मैं बहुत विस्तार में इन सब चीजों का एक उदाहरणों के साथ, शास्त्रों में अलग अलग भक्तों के साथ, भगवान लीलाओं के अलग अलग प्रसंगों को लेके, ये महाभाव होता क्या है और राग होता क्या है, अनुभव क्या, अनुराग क्या होता है, भाव क्या होता है, सब कुछ वो वर्णन करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कृष्ण भक्ति रसा, इसमें स्थायी भाव विभव अनुभव सात्विक व्यभिचारी, ये भी कुछ अलग अलग भाव है जो कृष्ण और उनके भक्त के बीच में जो संपर्क होता है या संबंध होता है, उस संबंध में उत्पन्न हुआ जो आनंद है, उस आनंद को रसा बोला जाता है। और इस रस में श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण और उनके भक्तों को लेके वो डूबे हुए रहते हैं। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु मतलब एक ऐसा सागर है जिसके अंदर कृष्ण और उनके भक्त हमेशा डूबे हुए रहते हैं। हाँ, तो इस बात को ये अलग अलग भावों को बहुत टेक्निकली रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत से वर्णन करते हैं, लेकिन आप चैतन्य चरितामृत में या टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य जाएंगे केवल उसको बहुत विस्तृत रूप में कहीं वर्णन नहीं रहेगा, एकदम सिंपल रूपों में दो तीन लाइन में सब समाप्त होता है। तो ये जब भक्ति रसामृत सिंधु को विशेष रूप में चर्चा किया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्तों के अलग अलग लीलाओं को अलग अलग प्रसंगों को लेकर इन सब चीजों को वर्णन किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये 13 प्रकार के कृष्ण भक्ति के जो कार्यकलाप है, यानी कृष्ण भक्ति में मदोन्मत हुआ व्यक्ति का ये 13 जो लक्षण है उसका भी रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। एक नृत्य करता है, कभी कभी वो भाव विभोर में होके वो जमीन के ऊपर लोटपोट होता रहता है, कभी वो गाता है, कभी वो तालियां बजाता है, कभी अपने रोम को खड़े हो जाते हैं, थंडरिंग, यानिंग, ब्रीदिंग, ये सब चीजें रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करते हैं। हम अभी केवल संक्षिप्त में बता रहे ताकि हमको एक आइडिया आए कि अस्तित्व में ये सब बातें कहाँ से आया, ये सब कहाँ है, कम से कम वो तो मालूम है, इसलिए हमने नोट्स में इस सब उल्लेखित किया है। तो अभी आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर, जो विषय है इसके अंदर, वो है 5 ट्रांसेंडेंटल रसस। जैसे हमने रूप गोस्वामी पाद का शिक्षा के अंतर्गत हमने सीखा कि भक्ति तत्व कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत प्रभु सिखाईला भागवत सिद्धांत। रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन चीज के बारे में भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर तीन चीज को सिखाया। एक क्या है? भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व। अभी आखिरी चीज क्या है? रस तत्व। ये रस मतलब क्या है? सब लोग रस को आम रस वगैरह जानते हैं, लेकिन इधर जो रस है, रसा का मतलब है भगवान और भक्त के बीच में से संबंध होता है, उनके बीच में आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान से उत्पन्न हुआ जो आनंद है उसको रस बोला जाता है। तो सबसे पहला रस है शांत रस। शांत के बाद दास्य, दास्य के बाद वात्सल्य, साक्षी, साक्षी के बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद माधुर्य। देयर आर 5 प्रिलिमिनरी और मेन रसस। ये शांत रस होता क्या है? व्हाट इज ए शांत रस? शांत रस में एक भक्त भगवान की ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्ति रहता है, उनको उनके भगवान का जो गुणों का या उनकी महत्ता को बहुत उनके प्रति आकर्षित होता है, उनको वर्णन करता रहता है, उनको सलाना करता है, अप्रिशिएट्स, और साथ साथ में उनका ये भौतिक चीजों के साथ बहुत विरक्ति रहता है, भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति और भगवान की गुणों के प्रति आसक्ति रहता है। लेकिन ये शांत रस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी अभाव है, वो कमी है। क्या है वो? वो सेवा की भावना नहीं रहता। भगवान का गुणगान बोलते, हाँ भगवान बहुत महान है, ओ हम जानते हैं ये, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सब बोलेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे सेवा करो तो सेवा की भावना, सेवा की प्रवृत्ति नहीं रहता है। तो देर इज अप्रिसिएशन, सलाना। शांत रस के जो भक्त है वो भगवान को सलाना करते हैं, उनकी महिमा को वर्णन करते हैं, या वर महिमा का जानकारी उनके पास रहता है, और भगवान की जो गुणों के प्रति आसक्ति भी रहता है, लेकिन उनके प्रति सेवा की भावना अभी उदय नहीं हुआ, और साथ साथ में उनको ये भौतिक आसक्ति भी नहीं रहता है, भौतिक चीजों से उनको विरक्ति भी रहता है। तो उनके अंदर एक गुण रहता है अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन ना सलाना। जब ये अप्रिसिएशन सलाहना के साथ और एक भाव जुड़ जाता है, क्या है वो? सेवा की भावना जुड़ जाता है, तब वो व्यक्ति दास्य रस में स्थित रहता है। दास्य रस में हमेशा वो तत्पर रहता है वो भक्त, किस प्रकार मैं भगवान की हमेशा सेवा करता रहूं। तो इसलिए अप्रिसिएशन प्लस सर्विट्यूड इज कॉल्ड दास्य रस, सेवा की भावना। तब धीरे धीरे से जब वो साख्य रस में क्या होता है, उन भगवान की सलाहना की भावना है, सेवा की भावना है, और साथ साथ में भगवान और मैं एक मित्र के रूप में दोनों समान है, ये समानता की जो भावना है वो भी जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है, समानता की भावना जुड़ जाता है, तब जब तीनों गुणों से युक्त जो चीज है उसको साक्षी रस बोला जाता है। हाँ, अब धीरे धीरे से जब और भगवान के प्रति स्नेह गाढ़ा होने लग जाता है, तब वो भक्त सोचने लगता है कि भगवान जो है मेरे ऊपर निर्भर है, अगर मैं उनको खिलाऊंगा तो वो भूखे मर जाएंगे, अगर मैं उनको कपड़ा नहीं पहनाऊंगा तो अरे वो तो इधर उधर नंगे घूमते रहेंगे, उसमें देखभाल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो मेरे ऊपर निर्भर है। जब डिपेंडेंसी, हाँ, पेरेंटहुड, जैसे माता पिता बच्चों के बारे में ऐसे सोचते हैं, अरे मैं नहीं होगा तो इनको क्या होगा, हमेशा संरक्षण करने की भावना, उनको देखभाल करने की भावना जब उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं कि वात्सल्य रस। तो हम देख सकते हैं कि जैसे रैसे ये शांत से दास, दास से साक्षी से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य में जा रहे, वो पिछले की रसों के जो गुण है सारे गुण उसके अंदर है। शांत रस के जो गुण है वो दासी में पाया जाता है, शांत और दासी के जो गुण है वो साक्षी में पाया जाता है, शांत दास साक्षी के जो गुण है वो वात्सल्य में पाया जाता है, शांत दास साक्षी वात्सल्य में जो गुण है वो माधुरी में पाया जाता है। माधुरी में एक महत्वपूर्ण जो गुण है भक्तों में, माधुरी भक्तों में, वो किसी और बाकी रसों में प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या है, वो इंटीमेसी, ओवरवेलिंग लव, यानी एक प्रकार का घनिष्ठता, वो जो है वो कोई और रस में प्राप्त नहीं होता है। और ये पांच मुख्य रसों के साथ साथ सात गौण रसों का वर्णन किया गया, हास्य, विभत्सा, ये सब चीजें वर्णन किया, लाफिंग, हैविंग वंडरफुल विजन्स, चेवलरी, पिटी, एंगर, घासलीनेस एंड डेवस्टेशन। ये खाली आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, अगर कोई बोला जाए कि भगवान का पांच प्रकार के रस है, क्या क्या है ये बता सकते हो, कम से कम पांच मुख्य रस है, सात गौण रस है, इतना तो याद रखेंगे तो अभी के लिए ये शुरुआत की कोर्स के लिए बहुत काफी है। ये बहुत गहरा विषय वस्तु है, लेकिन एक परिचय मात्र के लिए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन भले ही ये पांच प्रकार का मुख्य रस है और सात प्रकार का गौण रस है, इनके अंदर दो महत्वपूर्ण विभाजन है। ये है, कुछ लोग, कुछ भक्त लोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है, कुछ लोग माधुरी के प्रति आसक्त है। भगवान के दो स्वरूप है, एक है ऐश्वर्य, दूसरा है माधुर्य। ऐश्वर्य मतलब वो भक्त लोग जी भगवान की ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है, जैसे शांत और दास्य। ये शांत और दास केवल वो दोनों भक्त जो है वो ऐश्वर्य भावना में स्थित हो सकते हैं। जैसे वैकुंठ लोक में भगवान नारायण का माता पिता कोई नहीं होता है, उनका कोई मित्र करके कोई नहीं होता है, वैकुंठ लोक में सभी लोग दास हैं, ऑल आर दास। लेकिन केवल कृष्ण के प्रति ये पांचों रसों का प्रति आस्वादन हो सकता है, और उसके अंदर इसलिए साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तीन प्रकार के जो रस में युक्त भक्त है वो दो डिस्टिंक्ट विभाजन है, दो विस्तृत विभाजन है। एक है केवल भक्त लोग, दूसरे है ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त। एक है ऐश्वर्य ज्ञान रहित, दूसरा है ऐश्वर्य ज्ञान युक्त। यानी कुछ भक्त लोग है, कुछ भगवान के मित्र है जो ऐश्वर्य ज्ञान को उनको ज्ञान रहता है, ऐश्वर्य ज्ञान का, ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन जो है भगवान के साक्ष्य रस में है, तो हम देख सकते हैं कि जब भगवान ने, जैसे भगवद गीता में उन्होंने विश्व रूप को प्रकाशित किया, तब अर्जुन ने देखा, अरे तो कि मैं तो हे कृष्णा यादव, हाँ वो हम दोनों साथ साथ में बैठ के खाए, साथ साथ में सोए, मैं तुमको ऐसे ऐसे एक ही प्लेट में हम खा रहे थे, तुमको याद हुआ, ऐसे ऐसे साधारण से मित्र के रूप में बुलाया, अभी मुझे मालूम पड़ा कि आप भगवान। तो इसमें अर्जुन में ऐश्वर्य युक्त वो केवल भक्ति उनके अंदर प्राप्त नहीं था, अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति उनके अंदर था। लेकिन उससे श्रेष्ठ है वो है श्रीराम, और जितने ग्वाल बाल है वृंदावन में वो सब लोग, उन्होंने देखा कृष्ण ने पूतना को वध किया, इतने सारे लोगों को उन्होंने वध किया, असुरों को वध किया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को एक साधारण सा अपने मित्र के रूप में देखते हैं। जब प्रलंबासुर का वध हुआ था, तो उस समय हम देख सकते हैं बलराम ने प्रलंबासुर को वध किया, उससे पहले सब कृष्ण और बलराम सब लोग खेल रहे थे, और जो है कृष्ण जो है वो हार गए उस खेल में। उसमें ऐसा शर्त था कि जो हार जाता है उसको दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे को बिठा के लेके जाना है, तो कृष्ण हार गए थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, उनको श्री राम को अपने कंधे को बैठा के लेके जाना पड़ा। अब देखिए ये इन दोनों के अंदर मित्रता है, इतना गाढ़ मित्रता है। ये वृंदावन के जो भक्त है वो केवल भक्त है, कृष्ण के माधुरी के प्रति आसक्त है लेकिन ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं है। तो वैसे ही वात्सल्य में हम देखते हैं, जैसे यशोदा नंद महाराज, यशोदा माई ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड को देखा, उस ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड को सब कुछ इतना देखने के बाद भी उन्हें सोचा ये सब चीज भ्रांति चीज है, ऐसा मेरा जो लड़का है वो मेरा ही पुत्र है। लेकिन देवकी और वसुदेव के सामने जैसे कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो क्या करने लगे देवकी और वसुदेव, उनको प्रणाम किए। कभी भी ऐसा कोई पुत्र को प्रणाम किया जा सकता है, और कृष्ण को आलिंगन करने में वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, वो डर रहे थे, आलिंगन भी नहीं कर पाए। लेकिन यशोदा मैं ये सब जितना ये भगवान की भगवत्ता को देखने के बाद भी यशोदा मैं के अंदर जरा सा भी उनको ज्ञान नहीं था कि ये भगवान जो है वो भगवान है। आश्चर्य में यशोदा मैं के अंदर ज्ञान है लेकिन योग माया शक्ति के द्वारा वो लीला प्रकाश को ये उस प्रकार की ज्ञान को ढकाया जाता है। तो इसलिए यशोदा मैं और नंद महाराज का जो स्तर है वो केवल भक्ति भक्त के रूप में है, और ये वसुदेव और देवकी का जो स्तर है वो ऐश्वर्य युक्त है। तो इन सब चीजों के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। और गोपियां वो भी ऐश्वर्य ज्ञान रहित भक्ति, ये के द्वारका के जितने भी भगवान की पत्नियां हैं कौन है, ऐश्वर्य युक्त ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति कर रहे थे, माधुरी उनमें युक्त थे। जैसे रुक्मिणी, भगवान मजाक करते हुए उन्होंने बताया भगवान रुक्मिणी देवी को, अरे देखो कि आप इतने सुंदर हो, पता नहीं मेरा क्या होगा, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा योग्य नहीं हूँ, पता नहीं मैं तुम्हारा संग में रह पाऊंगा कि नहीं, तो इस प्रकार मजाक कर रहे थे भगवान। लेकिन रुक्मिणी देवी ने ये सोचा कि अरे सच में भगवान मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो बेहोश हो गए, वो सब कुछ उनके बाल ये सब बिखर गए और बहुत उनका परेशानी होने लगी रुक्मिणी को। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य का उनका ज्ञान था और उनके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, तो इस प्रकार की भावना था, उतना इंटीमेसी नहीं था। ये भगवान जब मजाक कर रहे थे, ये रुक्मिणी देवी जो है वो मजाक को मजाक के रूप में नहीं ले रही थी, बहुत सीरियसली ले रही थी। लेकिन इधर वृंदावन में थोड़ा सा अलग भावना। तो रासलीला के समय कृष्ण और राधा रानी वो दोनों निकल जाते हैं, उस समय श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के साथ साथ में चलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं देखो अब मैं बहुत थकी हूँ, जरा मुझे कंधे के ऊपर उठा के लेके जाओ। चाहे रुक्मिणी ये कभी बोल ही नहीं सकती क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति, इधर ऐश्वर्य ज्ञान रहित भक्ति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इनको वर्णन करते हैं। तो बेसिक कॉन्फिडेंस सेट फास्ट पोजिशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस समा दमा तितिक्ष्वा, ये शांत रस का वर्णन किया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट इज समा तितिक्ष्वा धृति, ये सब चीजें। और हमने क्वालिटीज का भी कुछ वर्णन किया है, जिस प्रकार ये श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी बात को कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एक एक चार एक एक गुण है। आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है, वो है शब्द। पृथ्वी जल अग्नि वायु का क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, वो है स्पर्श। अग्नि का जो है रूप, और जल का है स्वाद, और पृथ्वी का है सूंघना या स्मेल। तो ये पांच जो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके अंदर इस प्रकार है, पृथ्वी के अंदर सारे जो गुण है, सारे तत्व के जो गुण है उसके अंदर उपस्थित है, ऑल द एलिमेंट्स आर देयर। उसी प्रकार माधुरी के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग रस है, स्वात्सल्य साख्य और दास्य और शांता, ये सब भक्तों का जो गुण है वो माधुरी में स्थित है, इसलिए माधुरी रस को सर्वोच्च माना जाता है और उसको स्वीकार किया जाता है। भले ही अलग अलग भक्त लोग अलग अलग रस में हैं, अपने आप में वो लोग पर्याप्त है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाए, जैसे हनुमान दास्य रस में है, उनको कितना भी माधुरी का वर्णन किया जाए तो वो दास्य रस को श्रेष्ठ समझते हुए दास्य रस में वो अपना जीवन यापन करेंगे, उनको कृष्ण भक्ति को उनके भगवान राम से प्रति भक्ति करते रहेंगे। भले ही तारतम्य इन रसों में कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक के बाद उनकी श्रेष्ठता है। शांत रस से श्रेष्ठ है दास रस, दास से श्रेष्ठ है साख्य, साख्य से श्रेष्ठ है वात्सल्य, वात्सल्य से श्रेष्ठ है माधुर्य। हम इस संसार में भी देखते हैं कि जो रस तत्व के बारे में जो शांत रस है वो भी अनुभव करते हैं, कोई आप रास्ते में जा रहे हो कोई आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन उससे प्रिय है जो आपका सेवा करता है, आपके जो नौकर है। लेकिन नौकर से प्रिय है मित्र है, मित्र से प्रिय है हमारे माता पिता। जैसे विवाह हो जाता है तो माता पिता को भूल जाते हैं, माधुरी श्रेष्ठ है। तो ये पांच प्रकार का रस इस संसार में भी हमको पाया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि सारे रसों का जो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, उनको भूल के, उनके प्रति संबंध को भूल के हम किसी और के प्रति संबंध बना के रखे, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अकेला रसामृत मूर्ति, श्री कृष्ण का पहचान रूप गोस्वामी पाद, या श्री कृष्ण का परिचय रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कैसे देते हैं, बोलते हैं कि अकेला रसा अमृत मूर्ति श्री कृष्ण, सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। अगर अंग्रेजी में उन शब्द को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ऐसा बोला जाए शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में, कृष्णा इज रस बॉय। रस बॉय मतलब क्या है, वो बालक है जो सारे रसों का, सारे रिलेशनशिप्स का, सारे संबंधों का से उत्पन्न हुआ जो आनंद है वो उनका स्रोत है। He is a source of all the rasas, all the relationship. लेकिन हमारा ये जो मंदमति है, हम सोचते हैं कि ये जो ये व्यक्ति मेरा संबंधी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा माता पिता है, ये मेरा माधुर रस में इनके साथ मेरा संबंध है, ये मेरा ये है। इन अस्तित्व में हमारा ये भावना, इस प्रकार की जो संबंध है, ये मिथ्या संबंध है। इन सब संबंधों को भूल के अस्तित्व में हमारा सारा संबंधों का स्रोत या रसों का जो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इन संबंधों को हमको ढूंढना चाहिए। असलियत में संसार में माँ बच्चे से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में यशोदा मैं कृष्ण से प्रेम करती है। इस संसार में हम देखते हैं पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत कृष्ण जो है वो इनसे प्रेम करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ गोपियों के साथ इस प्रकार की प्रेम की भावना रहता है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में हमारे वास्तविक संबंध अस्तित्व में रहता है, लेकिन उसका विकृत प्रतिबंध मात्र संसार में पाया जाता है। अब देखिए ये विकृत प्रतिबिंब में ही लोगों को इतना आनंद मिलता है, तो वास्तविकता में कितना आनंद का अनुभूति होता होगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाओं का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध या वो रस को आस्वादन करना, रस को आस्वादन करने की विधि क्या है, वो है श्रवण कीर्तन से शुरू करते हुए अपराधों से बचते हुए हमको अपनी भक्ति को संरक्षण करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग अबाउट रूप गोस्वामी, टीचिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी, ये संक्षिप्त में एक सार रूप है ताकि आपको आइडिया रहे, इसके बारे में वर्णन किया। तभी हम सनातन गोस्वामी पाद पर चर्चा करते हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद, अस्तित्व में रूप गोस्वामी पाद कौन है और सनातन गोस्वामी पाद कौन है, दोनों ऐसे लग सकते हैं कि दबिर का सकार में लिखते हैं, बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले उनके भक्ति थे, दोनों भगवान के पार्षद हैं। जब श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए, यही रूप गोस्वामी पाद रति मंजरी के रूप में आए, रति और यही सनातन गोस्वामी पाद अनंग मंजरी के रूप में आए। ये दोनों सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोई भी हर एक जो उनके पार्षद है वो सभी लोग श्री कृष्ण के ही पार्षद है, क्योंकि श्री कृष्ण को श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, कृष्ण है। जब कृष्ण आते हैं उनके पार्षद आते हैं तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो कृष्ण के ही पार्षद वो पुरुष रूप में आते हैं। कृष्ण के पार्षद जितने भी मंजरियां हैं, कितने भी ग्वाल बाल है, सखा है, सब लोग हैं श्री चैतन्य लीला में भाग लिए। तो कृष्ण लीला में जो अनंग मंजरी सनातन गोस्वामी के रूप में आए, और लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी के रूप में आए, और ये रूप गोस्वामी पाद रति मंजरी के में रूप गोस्वामी पाद, तो इनको सनातन गोस्वामी का चर्चा करते हैं। हमको मालूम है किस प्रकार शील रूप गोस्वामी पाद अपने धन को बटोरा करके आगे लेकिन सनातन गोस्वामी बात भी निश्चय किया, अभी रूप गोस्वामी पास चले गए तो मैं भी इंतजार करूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु आज्ञा प्राप्त करने का। तो उन्होंने क्या किया, अभी ऑफिस जाना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड गोइंग टू द ऑफिस सनातन गोस्वामी। तो केवल घर में बैठे रहे और ऑफिस को चिट्ठी भेजे कि मैं बीमार हूं, सिक लीव, सिक लीव करके वो घर में बैठे रहे। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, बहुत सारा 15-20 दिन हो गया तो सनातन गोस्वामी का बीमारी खत्म ही नहीं होता है। तो नवाब हुसैन शाह को बहुत परेशानी होने लगी क्योंकि उनको जाना था दक्षिण की ओर यानी उड़ीसा की ओर, उड़ीसा की ओर जाके उधर युद्ध करके उनको राज्य जीतना था। तो पूरा बंगाल के राज्य को कौन संभालेगा, तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पास नहीं तो उनका पूरा दोनों हाथ टूट गए, तो उनको राज्य चलाने के लिए कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने एक राज्य के वैद्य को भेजा, जाके देखो सनातन गोस्वामी पास क्या कर रहे, व्हाट इज ही डूइंग। तो वो राजा का वैद्य जो है वो जाके देखा सनातन गोस्वामी का क्या कर रहे, आराम से बैठे है और 15-20 ब्राह्मणों को साथ में लिए हुए है और भागवतम का रोज अध्ययन चल रहा है, दिन भर भागवतम का अध्ययन चल रहा है। अगर भागवतम के प्रति अगर किसी का रति है तो सनातन गोस्वामी पाद को का उदाहरण दिया जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक रात को सनातन गोस्वामी पाद के सपने में एक ब्राह्मण आए और उनको ब्राह्मण ने उनको भागवतम का दान दिया है, एक ग्रंथ का दान दिया और भागवतम का दान दिया। तो सनातन गोस्वामी पाद अगले दिन जैसे उठे, सुबह सच में एक ब्राह्मण आए और सनातन गोस्वामी पाद को एक भागवतम उन्होंने दान दिया। जैसे सनातन गोस्वामी पाद को भागवतम मिला, तुरंत भागवतम को अपने हृदय तक स्पर्श करके भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और वो ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने बताया कि नित्य रूप में भागवतम का पाठ करते रहो और उनके प्रति अपना रति को उत्पन्न करो। तो ये श्री सनातन गोस्वामी पाद का विशेष लगाव था श्रीमद भागवतम के प्रति। तो इसलिए 15-20 ब्राह्मणों को बुला के वो भागवतम को नित्य वो कर रहे थे, नित्य पठन कर रहे थे ब्राह्मणों के साथ। तो ये जो कार्य है सनातन गोस्वामी जो कर रहे थे, सनातन गोस्वामी पाद पुरश्चर्य विधि को वो पालन कर रहे थे। ये पुरश्चर्य विधि शुद्धिकरण करने की विधि होता है, हम सबको मालूम है, पहला दिन चर्चा किया था, ये बात को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये पांच संवाद पांच ज्ञान को प्रदान करता है। रूप गोस्वामी पाद के बीच में संवाद जो है वो अभिधेय ज्ञान, सनातन गोस्वामी पाद का संवाद जो है वो संबंध ज्ञान, रामानंद संवाद जो है वो प्रयोजन ज्ञान और प्रकाशानंद सरस्वती जी का अभिधेय विचार और सारमठाचार्य का जो है वो संबंध विचार। ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, बार बार आता रहेगा। अगर कोर्स के अंत में ये पांच चीजें किसका क्या क्या संबंध है वो मालूम हो गया, इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है। तो सनातन गोस्वामी पाद का जो संवाद है वो संबंध ज्ञान और संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी पाद है और संबंध देव कौन है, राधा मदन मोहन, और अभिधेय देव कौन है, हु इज द डेटी फॉर अभिधेय, श्री श्री राधा गोविंद जी है अभिधेय का, और प्रयोजन का देव कौन है, राधा गोपीनाथ, वेरी गुड। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी का संवाद ये संबंध ज्ञान, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य है। दो प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कृष्णदास गोस्वामी, एक है शिक्षा गुरु, दूसरा है दीक्षा गुरु। और रूप गोस्वामी पाद का संवाद, रूप गोस्वामी कौन है, हमारे शिक्षा गुरु है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव शिक्षा गुरु, अस्तित्व में 6 के 6 गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु है। ये शिक्षा की विधि को रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। लेकिन अभी सनातन गोस्वामी का जो जो कहानी है या उनका जो कार्य है, उनका जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नजदीक जाना, ये दीक्षा को सूचित करता है। दीक्षा होता क्या है हमको सनातन गोस्वामी पाद के इनका चरित्र से प्राप्त होता है, उनका जो जीवन शैली से प्राप्त होता है हमको। जैसे जन्म लेते ही एक जन्म होता है माँ के गर्भ से, उसके बाद और एक जन्म होता है उसको बोलते हैं पुरश्चर्या। ये पुरश्चर्य विधि शुद्धिकरण करने की विधि होता है, यानी दीक्षा का तैयारी का विधि है। अभी सनातन गोस्वामी पास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी उनसे भगवान का संबंध जोड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी दीक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे रास्ते में से उठा के किसी को दीक्षा नहीं दिया जाता है, या बस ऐसे आगे तुरंत जाके दीक्षा के लिए बैठना नहीं चाहिए, व्यक्ति को उसके लिए तैयारी करना होता है। इसलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में जो दीक्षा लेना चाहता है तो उनके लिए हम एक साल या दो साल तक हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या वो पुरश्चर्य विधि को पालन कर रहा है कि नहीं। ही शुड फॉलो द पुरश्चर्य। ये पुरश्चर्य विधि क्या है? इट इज ए प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। इसके अंदर रोज भागवत का अध्ययन करना, रोज हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना और ब्राह्मणों को बुला के उनको दान देना, ब्राह्मणों को उनको प्रसाद भोजन वगैरह खिलाना और यज्ञ की होम नित्य होम वगैरह करना, ये जो है ये पुरश्चर्य विधि के अंतर्गत आता है। जो पुरश्चर्या ये विधि को अच्छी तरह से पालन करता है, जितना अच्छी तरह से पुरश्चर्य विधि को पालन कर सकता है वो उतना वो दीक्षा के लिए वो तैयार व्यक्ति है। तो सनातन गोस्वामी पुरश्चर्य विधि को पालन कर रहे थे उस समय। वैद्य आए कि देखे सनातन गोस्वामी तो फर्स्ट क्लास है, हटक हटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वापस जाके उन्होंने नवाब हुसैन शाह को बताया, उस समय के बंगाल के राजा थे, कि सनातन गोस्वामी पास जो है हटक हटे कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। तो हुसैन शाह तुरंत स्वयं आए, स्वयं आके जैसे हुसैन शाह नवाब हुसैन शाह आए सनातन गोस्वामी बैठे थे तो खड़े उठ के, असल में सनातन गोस्वामी कौन है, इतने महान पंडित है, उतने महान ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु पार्षद है, लेकिन जैसे नवाब हुसैन शाह मुसलमान है गायक आने वाला व्यक्ति है वो आते ही सनातन गोस्वामी खड़े होके अपना जो सीट है अपना जो आसन है उनको प्रदान किया, उनको बोले बैठिए। क्योंकि सनातन गोस्वामी पास क्या देख रहे थे कि अभी नवाब हुसैन शाह उधर के राजा है। राजा कौन होता है? राजा जो है भगवान का कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो कृष्ण का प्रतिनिधि होने के नाते यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव तद् देवाभिगत सत्त्वं मम तेजोंच संभवम्। इस श्लोक को चित्र कृष्णदास के विराज गोस्वामी कोट करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद का चित्त इतना निर्मल था कि वो जब नवाब हुसैन शाह को देख रहे थे वो इस बात को नहीं देख रहे थे एक मुसलमान है एक राजा है मांस खाने वाले इनको क्या आदर देना, इस प्रकार की भावना तो उनके था ही नहीं। तो देखा एक राजा है, राजा कौन होता है? कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, तो उनको कृष्ण को आदर देना चाहिए। तो आदर देना मतलब राजा के द्वारा आदर दिया जाए, तो उनको उन्होंने इस प्रकार देख के आदर दिया। तो ये पुरश्चर्य विधि के द्वारा इस प्रकार की चित्त होता है हमारा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सनातन शिक्षा जो है खास करके हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अभी ये संबंध ज्ञान के स्तर में है। जयताम सुरतोर पंगुर महमंद मतेर गतिमत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। ये संबंध प्रणाम मंत्र है, इसके अंदर हम प्रार्थना करते हे मदन मोहन, अस्तित्व में मेरा आकर्षण जो है ये जड़ तत्वों के प्रति है, इट इज टुवर्ड्स दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अभी उसको नाश करो क्योंकि आप मदन मोहन हो और मेरा जो है चित्त जो है मदन के प्रति है, लेकिन मेरा आप प्रार्थना करता हूं कि आप मदन मोहन होने के नाते मुझे आप मोहित कीजिए ताकि मेरा मदन जो है मुझे मदन की मोह से मुझे बचाइए। तो इस प्रकार की प्रार्थना किया जाता है। तो सनातन गोस्वामी के पास आए नवाब हुसैन शाह और सनातन गोस्वामी से बोलते हैं कि एक भाई तो जंगली जानवर हो गया है वो, और दूसरा भाई भी अगर त्याग करते इस प्रकार बैठ जाता है तो ये समाज का क्या होगा। अस्तित्व में नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को भाई के रूप में मानते थे और बोले कि मैं तो कुछ नालायक व्यक्ति हूँ, मैं तो खाली जाके लोगों को मारता हूँ पीटता हूँ वो सब करता हूँ, लेकिन अगर दूसरा भाई यानी सनातन गोस्वामी पे जिक्र करता तुम अगर तुम भी इस प्रकार हो जाओगे, तुम भी गैर जिम्मेदार हो जाओगे, ये राज्य को कौन चलाएगा। तो सनातन गोस्वामी पाक बोलते हैं कि अभी मैंने निश्चय किया है कि मुझे फिर से राज्य में नहीं आना है, मुझे भौतिक संसार में वापस भौतिक कार्यकलाप में मुझे और जुड़ना नहीं है, मुझे आप कृपया कर आप जो करना है कीजिए, आप राजा हो। तब नवाब हुसैन शाह को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? जगन्नाथ उड़ीसा के उत्कल राज्य में जाके उनको आक्रमण करना चाहता हूँ। तो उधर बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद इतना बहुत सारे कार्यकलापों को सहन किए नवाब हुसैन शाह के अत्याचारों को, अलग अलग उनको गायवध करने की ना उनकी जो उनके ऊपर मोहर लगाते थे और जाके तो आप सैंक्शन देते थे सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे नवाब हुसैन शाह के अंदर ये विचार आया कि मैं जगन्नाथ क्षेत्र में जाके जगन्नाथ जी के ऊपर मैं राज्यत्व करना चाहता हूँ, तो उनके अंदर इस प्रकार के विचार आया सनातन गोस्वामी जरा से सह नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने उस राजा का सेवा को उन्होंने त्याग कर दिया। He gave up the service to that king। तो नवाब हुसैन शाह ने बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ उत्कल राज में, उनके जो सैनिकों को बोला अभी सनातन गोस्वामी पास अरेस्ट करो, अरेस्ट करके जेल में डाल दो। तो सनातन गोस्वामी पास जेल में थे तो समय रूप गोस्वामी पास से उनको एक चिट्ठी मिला। उस चिट्ठी में रूप गोस्वामी पास लिखे थे कि मैं एक व्यापारी के पास में 10,000 सोने की मुद्राएं रखा हूँ, तो आप उस सोने की मुद्राएं को इस्तेमाल करके जेल से निकल के आप बाहर आ सकते हो। तो सनातन गोस्वामी पास एक जेल कीपर के पास गए, जेल सुपरिंटेंडेंट के पास जाके बोले कि भावबंधन से जो मुक्त कराता है वो अस्तित्व में बहुत सबसे बड़ा कृपालु होता है, और मैं अभी इस जेल में फंसा हुआ हूं, तो आप मुझे इस भावबंधन से मुक्त कराइए, इस जेल से मुक्त कराइए, तो उसके बदले में मैं आपको जो है 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो जेल कीपर ने थोड़ा सा देखा, 5,000 की सोने की मुद्रा बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा बोलने लगे कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो नवाब हुसैन शाह मुझे मार देंगे। तो सनातन गोस्वामी बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपको 7,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो जेल कीपर बोला हाँ मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उनको बहुत लालसा लालच हो गया। तो सनातन गोस्वामी पास कैसे भी उनको छल करके तो बताया कि आप जेल कीपर को आप डरो मत, निश्चिंत रहो, जब आप नवाब हुसैन शाह आएंगे तो उनको बताना कि सनातन गोस्वामी पास को पेशाब करने के लिए जाना था, मैं उनको गंगा के तट के पास लेके गए, तो बाद में देखता हूँ कि सनातन गोस्वामी पास वो गंगा के तट में गंगा में कूद गए। कूद के मैं बहुत इंतजार किया, वो बाहर नहीं आए, गंगा का जो लहर में वो उनका मृत्यु हो गया करके इस प्रकार बोल देना। मैं जो है एक धारावेश का रूप धारण करके, धारावेश मतलब उस समय जो मुसलमान जो संत थे उनको धारावेश बोला जाता था, कि वो लोग पूरा इधर से ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा पहनते थे, सिलाई हुआ कपड़ा। पहले के लोग ब्राह्मण लोग या हिंदू लोग उस समय कोई सिला हुआ कपड़ा कोई पहनता नहीं था, केवल एक धोती था उसके ऊपर एक गमछा था वो पहन के, वो अंग वस्त्र था वो लेते थे, सिल के कोई व्यक्ति पहनता नहीं था। तो जो संत लोग जो मुसलमान संत लोग है उनको धारावेश बोला जाता, उस समय धारावेश लोगों को बहुत इज्जत दिया जाता था। हाँ उस समय के जो मुसलमान जो वरिष्ठ हो गए बुजुर्ग हो गए अभी उनको अभी पूरा जीवन एक प्रकार का संन्यास धर्म जैसा जीवन बिताना है, वो सब लोग ये धारावेश रूप धारण करके वो भारत से लेके मक्का तक चल के चलते जाते थे। तो उस समय के उस जमाने में उन लोग बहुत इज्जत दिया जाता था। तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि मैं अभी धारावेश का रूप धारण करके मैं निकल जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी निकले, उनके साथ और एक व्यक्ति था, उनका नाम था ईशान, सनातन गोस्वामी का सेवक। तो सनातन गोस्वामी ईशान चलते चलते उल्टे रास्ते में चलते जाते, दो दिन तक पैदल चलते गए, तो एक जगह पहुंचे तो उनको थोड़ा सा आराम करना था, तो उधर एक होटल मिला। वो होटल में जो मालिक था, ये मालिक के साथ में एक एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी था, वो ज्योतिषी ने वो मालिक को बताया कि अभी एक व्यक्ति आने वाला है, उनके पास 8 सोने की मुद्राएं। तुरंत वो जो मालिक है उनके अंदर लोभ आया, तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों को मैं अच्छी तरह स्वागत करूंगा, उनको अच्छा कमरा दूंगा, बाद में रात को उनको वध करके मैं ये सोने की मुद्राएं मैं ले लूंगा। तो अब जैसे सनातन गोस्वामी और ईशान पहुंचे तो तुरंत वो होटल का जो मालिक है अच्छी तरह स्वागत किया, और सनातन गोस्वामी को जो भी चाहिए था उनको पकवा के प्रसाद के लिए उन्होंने सब प्रदान किया। तब सनातन गोस्वामी दो दिन से क्योंकि कुछ आहार नहीं ग्रहण किए थे तो उन्होंने अच्छी तरह से पकाया और खाया। तब बाद में सोचने लगे, विचार करने लगे कि ये व्यक्ति अनजान व्यक्ति है, ये अनजान व्यक्ति हमको इतना आदर सत्कार कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर दाल में खाला है। तो इसलिए ईशान से पूछे सनातन गोस्वामी पर कि आपके पास कितना धन है। तो ईशान ने बोला मेरे पास जो है 7 सोने की मुद्राएं। तो सनातन गोस्वामी पास जो 7 सोने की मुद्राएं लिए और बोले कि वो होटल के जो मालिक है उनको बताया कि आप ये ले लो और हमको ये जंगल में या जो सीधा बनारस की ओर जाना है हमको, तो पहाड़ क्रॉस करके उधर क्रॉस करके रास्ता हमको बराबर बता दीजिए। तब होटल का मालिक ने तुरंत सनातन गोस्वामी को प्रणाम के बताया कि रास्ते में ये जो धन है उसकी लालच में मैं आपको वध करने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि आपके पास धन है। तो सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने वापस लौटा दिया, ये 7 सोने की मुद्रा आप ही रखिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। सनातन गोस्वामी पाद ने बताया जब तक ये धन है मेरे पास आप नहीं तो कोई और मुझे मारेगा, यही सारा दुख का कारण है, इसलिए उन्होंने बोला आप ही रख लो इसको। तब सनातन गोस्वामी पाद को होटल के मालिक ने एक रास्ता बताया पहाड़ में उतर के इधर से उधर से उल्टे रास्ता, क्योंकि सीधे रास्ते में जाएंगे बहुत सारे बंगाल में आने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर लोग आते रहते हैं, तो सनातन गोस्वामी को पहचानेंगे, नवाब हुसैन शाह तक खबर पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो उल्टे रास्ते पकड़ के जा रहे थे सनातन गोस्वामी। तब ईशान से पूछे कि तुम्हारे पास कुछ और धन बचा है? तो ईशान ने बोला हाँ, मैं बहुत समझदारी से मेरे पास 8 थे, मैं खाली 7 दिया आपको, एक बचा के रखा हूँ। तब सनातन गोस्वामी बताया का ये जो बुद्धि है कुछ बचा के रखना, भागे कुछ ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, ये भावना जब तक है तब तक अस्तित्व मेरे साथ रहने के लिए लायक नहीं हो। यानी सनातन गोस्वामी बात वर्णन कर रहे हैं कि जब तक इस प्रकार की भावना है, संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर भरोसा करने की भावना नहीं है, तब तक ये पुरश्चर्य और शरणागति नहीं हो पाएगा, तो इसलिए तुम वापस चले जाओ। इसलिए ईशान को वापस भेज दिया उन्होंने। तो सनातन गोस्वामी बात दिन रात ऊपर नीचे जो जंगलों के रास्ते से चलते चलते जा रहे थे, तो रास्ते में उनको श्रीकांत करके एक व्यक्ति मिला, जो भी वो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर थे और सनातन गोस्वामी के बहनों ही थे, उनके बहन के जो पति हैं। तो उन्होंने देखा कि ये सनातन गोस्वामी पाद के पास ये तो इतना गंदे कपड़े पहन के आ रहे, कुछ नहाए नहीं धोए नहीं। तो उन्होंने बोला मेरे साथ रुको तुम, मैं तुमको अच्छी तरह से संभालूंगा, कपड़ा वपड़ा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी पाद बोला मुझे एक क्षण भी नहीं रुकना है, मुझे जाना है। तो उनके बहनों ने बोला कम से कम एक कंबल तो लो, हाँ। तो उन्होंने एक बहुत महंगा कंबल दिया। तो सनातन गोस्वामी पाद अभी चलते 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 गए। जब गए बनारस में पहुंचे, तो बनारस में जैसे पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि सनातन गोस्वामी पाद को कि श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में वो निवास कर रहे हैं। जैसे हमको मालूम है कि रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, शिक्षा रस तत्व भक्ति तत्व सब तत्वों के ऊपर उन्होंने शिक्षा दे के, जब रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा देने के बाद रूप गोस्वामी पाद को बोले श्री चैतन्य महाप्रभु अभी तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके दो कार्य करो, एक है मेरी शिक्षाओं के ऊपर आधारित होकर ग्रंथों को लिखो, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली है उस लीला स्थली को फिर से प्रकाशित करो, क्योंकि वो सब लुप्त हो चुके हैं अभी। तो ये दोनों कार्यों को रूप गोस्वामी पाद को बताया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते गंगा तट के ऊपर आए और उधर से बनारस से वो अलाहाबाद की ओर, प्रयाग की ओर, सब प्रयाग से लेके वो बनारस की ओर चलने के लिए वो बोट के ऊपर बैठे। तब रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलता है कि मुझे भी आपके साथ आना है, आपका विरह मैं सह नहीं सकता हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलता है कि ये मेरे साथ आने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुम मेरे आज्ञा को पालन करना। मेरी आज्ञा यह है तुम जाओ वृंदावन में जाके भगवान का जो लुप्त हुआ और स्थलों का लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, और बाद में तुम मुझसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आना, बंगाल से होते हुए जगन्नाथपुरी बाद में आना, हम फिर वापस चर्चा करेंगे। तो जैसे सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु नाव के ऊपर बैठ के वो बनारस की ओर निकल पड़े, तो समय रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु विरह को सह नहीं पाए और बेहोश हो गए। तब कैसे भी करके रूप गोस्वामी पाद बुलाया गया, और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे वो बनारस की ओर पहुंचने वाले थे, तो समय रात को चंद्रशेखर आचार्य को ये सपना आया जिसमें एक महान सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे और श्री चंद्रशेखर आचार्य जाके उनको रिसीव कर रहे। अगला दिन तुरंत तो चंद्रशेखर आचार्य गंगा के तट पे ऊपर गए, तो उधर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव के ऊपर से आ रहे थे, और चंद्रशेखर आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोला जब तक आप बनारस में हो तब तक आप मेरे घर में रहिए। अब उस समय तपन मिश्रा उन्होंने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब तक आप बनारस में हैं कृपया करके मेरे घर में आप प्रसाद को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाके, वृंदावन से वापस जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सबसे पहला प्रयाग में यानी अलाहाबाद ने रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन शिक्षा दिया, उसके बाद बनारस में आए, उसी समय सनातन गोस्वामी पाद बनारस में पहुंचे। तो उनको मालूम पड़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में हैं। तब चंद्रशेखर आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में है, सनातन गोस्वामी पाद चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने है। तब क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण मिलन है श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद का, और उनका संवाद खास करके दीक्षित भक्त और दीक्षा लेने वाले भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट रिवील्स द संबंध ज्ञान, संबंध आचार्य, संबंध ज्ञान मतलब दीक्षा गुरु की उसे संबंध ज्ञान, शिक्षक गुरु जो है वह विधेय ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम इधर हम समाप्त करेंगे, कल हम आगे सनातन गोस्वामी पाद का चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अब रोज अपना